ओम शांति। एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा घर था। घर बहुत बड़ा था और घर के बाजू में एक तालाब भी था और घर के सामने एक सुंदर बगीचा भी था और घर के पीछे एक पर्वत छोटा सा और थोड़ा और पीछे एक सुंदर सा घना जंगल। परंतु यह व्यक्ति रोज रोज कई सालों से उसी घर में रहते रहते, उसी घर को देखते देखते और उसी बगीचे को देखते देखते और उसी पर्वत को देखते देखते और उसी तालाब को देखते देखते उब गया था। सोच रहा था कि सब कुछ वही वही है, कुछ भी यहां पर नया नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना इस घर को बेच दूं और एक अच्छा सा कोई नया सा दूसरा घर ले लूं। तो उसने ऐसे ही एक एजेंट को बुलाया, रियल एस्टेट एजेंट, और उससे कहा कि ये जो घर है जहां मैं रहता हूं ये मुझे बेचना है। तो वो दूसरा व्यक्ति अचंभे में आ गया और वो कहता है आखिर क्यों? वो कहता है कि यहां को, यहां जो भी चीजें हैं, चाहे अंदर या बाहर, ये सब देख देख कर मैं बोर हो गया हूं। मुझे कुछ तो नया चाहिए, कुछ तो और अधिक सुंदर चाहिए। तो वो एजेंट कहता है कोई बात नहीं, मैं अखबार में इश्तिहार दे दूंगा, एडवर्टाइजमेंट, और तुरंत ये बिक जाएगा। तो दूसरे दिन वो एजेंट अखबार में एडवर्टाइजमेंट करता है और नीचे अपना नाम और नाम या तो केवल फोन नंबर लिखता है वहां पर। दूसरे दिन जब यह व्यक्ति जिसका घर था वो अखबार खोलता है और जैसे ही पढ़ता है उसमें उसका नाम नहीं लिखा होता है, वही एडवर्टाइजमेंट पढ़ता है कि ऐसा एक बहुत सुंदर घर है और उस घर के पीछे एक बहुत सुंदर पर्वत है और वहीं पर एक दूर बहुत बड़ा अच्छा घना सा जंगल है और घर के सामने एक तालाब है, एक बहुत ही अच्छा मनहर बगीचा है, घर ऐसा ऐसा बना हुआ है, ऐसे ऐसे मार्बल का वो बना हुआ है। वो सारा वर्णन इतना मोहक होता है कि वो पढ़ते पढ़ते ही ये जो व्यक्ति होता है जिसका वो घर होता है वो सोचता है ये घर मुझे खरीदना है और वो तुरंत जो नंबर वहां लिखा होता है फोन नंबर उसको कॉल करता है और कहता है कि चाहे कितने भी पैसे देने पड़े ये पहले तुम काम करो कि ये जो घर आज के न्यूज़पेपर में आया है वो मुझे खरीदना है। तो वो एजेंट कहता है यह असंभव है क्योंकि वो आपका ही घर है। वो कहता है क्या मेरा ही घर है? पर परंतु जिस ढंग से तुमने इसका वर्णन किया है, ऐसा सुंदर घर, ऐसा नैनाभिराम दृश्य, ऐसे सुंदर पर्वत, ऐसा सुंदर बगीचा, ये तो मुझे तब लगा था जब पहली बार इस घर में आया था, पहली बार जब इस घर को देखा था, तब ऐसे उमंग, तब ऐसी एक्साइटमेंट थी, और पता नहीं इतने सालों में वो उमंग, वो उत्साह, वो एक्साइटमेंट कहां खो गई, और फिर सब कुछ वही 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 लगने लगा। पर तुम्हारा ये वर्णन सुनकर फिर से वही उत्साह जाग उठा है। कल सुबह की अव्यक्त वाणी, ये ज्ञान भी कैसा हो गया है कभी कभी, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही बाप आए हैं, वही तुम्हें घर चलना है, वही तुम्हें आत्मा समझ बाप को याद करना है, सुबह सुबह उठो, बाप से बात करो, वही तुम्हें सेवा करनी है, दिव्य गुण भी धारण करने हैं, तुम्हें लक्ष्मी नारायण भी बनना है, अपने आप को चेक करो, बंदरपन तो नहीं है। एक ही चीज जब बार बार कानों में पड़ती है, एक ही चीज जब व्यक्ति बार बार पढ़ता है, एक ही चीज जब व्यक्ति बार बार उसी ढंग से देखता है, तो धीरे धीरे वो चीज उसको उत्साह नहीं, कभी कभी उबाने वाली हो जाती है। तो क्या किया जाए? उस व्यक्ति को भी अपना घर ऐसा ही हो गया था, सब कुछ वही 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 वही, और जैसे ही एक दूसरा वर्णन पड़ा, जैसे ही ये पड़ा कि ये जो मेरे पास है वो ये है, तो अचानक फिर से वही एक्साइटमेंट, अचानक फिर से वही उमंग, फिर से वह उत्साह, फिर से वह दृष्टि में सौंदर्य आ गया। तो बाबा ने कल मुरली में क्या कहा कि ये ज्ञान भी कैसा नहीं है, रूखा सूखा नहीं है, इसमें नवीनता है, और यही नवीनता, यही रमणीकता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। पर कहीं वह रमणीकता और वही नवीनता खो तो नहीं गई? तो आज हम उसी नवीनता को पुनः कैसे लाए, और जो बाबा ने युक्तियां बताई उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जनवरी मास चल रहा है, 18 जनवरी 1969 से अव्यक्त मुरलियों की जो अव्यक्त धारा बह रही है, उस अव्यक्त गंगोत्री से ये एक ऐसी गंगा है। आज सुबह मुरली में कहा था, चाहे उस गंगा में सारी उम्र जाकर बैठ जाओ, तमोगुनी बनना ही है, परंतु ये जो अव्यक्त धारा है जो बह रही है, अव्यक्त वाणियों की गंगा, अव्यक्त वाणियों का अव्यक्त प्रवाह जो बह रहा है, यदि कोई इसमें खो जाए, यदि कोई इसमें डूब जाए, इस अव्यक्त प्रवाह में, इस अव्यक्त अनहद नाद में, तो जीवन में फिर वह बोर्डम, वह उब, वह निरस्ता, वह विरस्ता नहीं रहेगी। रस जो खो गया है वो फिर आ जाएगा। ब्राह्मण जीवन जो कभी कभी कहीं कहीं रूखा सूखा सा हो गया है, सब कुछ वही वही करते करते, वही अमृत वेला, और फिर वही मुरली, और फिर वही दिनचर्या, और फिर वही सेवाएं, कहीं ना कहीं वही वही चीजें करते करते व्यक्ति थक जाता है। तो क्या किया जाए? जिससे जीवन में नवीनता आ जाए, जिससे जीवन जो कहीं कहीं रसहीन हो गया है, ये जो विरसता आ गई है, इससे हम उभर जाए। उसी की कुछ युक्तियां कल अव्यक्तवाणी में बाबा ने हमें बताई थी। तो मुरली में एक तो टाइटल दिया, एक वरदान दिया और एक आसन। कौन सा टाइटल, कौन सा वरदान और कौन सा आसन? कौन सा टाइटल दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम। एक टाइटल, एक वरदान। कौन सा वरदान? जिसे अमृत वेला रिवाइज करना है, स्मृति भव, और एक हंस आसन, एक ब्लेसिंग, एक सीट, एक टाइटल। कौन सा आसन? कौन सा आसन? समर्थ स्थिति का आसन। मुरली मर्यादा पुरुषोत्तम बनने पर है। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ तो तीन चीजें हो जाएगी। कौन सी? मेहनत से बच जाओगे, तीसरी। पहला, मर्यादाओं पर चलोगे तो पुरुषोत्तम बन जाओगे। दूसरा, 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 तमोगुणी आत्माएं, तमोगुणी वायुमंडल, तमोगुणी वाइब्रेशन से सेफ रहेंगे। तो आत्माएं भी तमोगुणी है और प्रकृति भी तमोगुणी है, इन तीनों के प्रभाव से सेफ रहेंगे। तो ये तीन फायदे हैं किसके? मर्यादाओं पर चलने के। मर्यादाओं पर चलते रहो तो क्या हो जाएगा? उस दिन भी बाबा ने अव्यक्त वाणी में नीचे रिकॉर्डेड मुरली जो थी, एक तरफ देखते रहो, 18 जनवरी की मुरली, एक तरफ देखते रहो, दूसरी तरफ तुम्हें देखना ही नहीं है, तभी अवस्था अचल अडोल स्थिर रहेगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। उसी मुरली में कुछ मर्यादाओं की बाबा ने चर्चा की है। तो आज की क्लास में हम ऐसी उसी मुरली के आधार से, वैसे मर्यादाएं तो बहुत सारी है, सभी ने पढ़ी हुई है, सभी जानते हैं, पर उस मुरली में जो कल की संडे की मुरली थी, उसकी ऐसी 16 मर्यादाएं जो बाबा ने बताई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम उन मर्यादाओं की चर्चा करें, इन मर्यादाओं की लकीर को यदि कोई उल्लंघन कर दे तो क्या हो जाता है? सीता की कहानी सभी जानते हैं, कहां पहुंच गई? शोक वाटिका में। क्यों? ऐसी वहां पर 7 अवस्थाएं हैं, 7 स्टेजेस सीता के अपहरण की। वो 7 में से यदि 6 हो जाती और 7वीं न होती तो शायद उसका अपहरण न होता। वो जो 7वीं बात है वो इतनी महत्वपूर्ण है। पहला, आकर्षण। मृग को देखा और आकर्षण हुआ। इस जिस्म को तुम्हें देखना ही नहीं है। सिनेमा दोजक का द्वार है। कल की मुरली थी ना, परसों की। सेवेंटी की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, इस देह को याद करना अर्थात मुर्दे को याद करना, और यदि तुम मुर्दे को याद करते हो तो भविष्य में मुर्दा घाट में काम करना पड़ेगा। आकर्षण। सबसे पहले सीता को क्या हुआ? आकर्षण हुआ, देखा और आकर्षण हुआ। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, वैभव, पद, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, मैं भी कुछ हूं, मुझे भी सब जाने, आकर्षण। यहां जाऊं, वहां जाऊं, वॉन्डर लस्ट, ये खाऊं वो खाऊं, दूसरा पाने की इच्छा। पहले आकर्षण हुआ और फिर पाने की इच्छा हुई। पहला ना होता तो दूसरा ना होता। पहले देखा और आकर्षण हुआ, और जिस जो वस्तु आकर्षित करती है उसे ही व्यक्ति पाना चाहता है, और उसमें यदि कोई बाधा उत्पन्न करे तो क्रोध को जन्म देता है। पाना है, मिलना चाहिए। यदि कोई वो व्यक्ति है तो काम का आवेग जन्म लेगा, यदि वस्तु है तो सांसारिक इच्छाएं तीव्र होगी। तीसरा उसने उसे धोखा हुआ, तीसरा धोखा। आवाज थी किसी और की, किसकी आवाज समझी? राम की। आवाज थी मारीच की, राक्षस की, पर क्या समझा उसने? राम की आवाज है। आवाज माया की है, परंतु ब्राह्मण आत्मा क्या समझ लेती है? जैसे बाप बोल रहा है। धोखा होता है। अगला चौथा अविश्वास। क्या उसे पता नहीं राम कौन है? क्या उसे ये नहीं पता कि जो मेरा साथी है, क्या उसे और किसी के साथ की आवश्यकता है? क्या और किसी की मदद की आवश्यकता है? वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वसमर्थ है। अपने राम पर ही अविश्वास। पांचवा जिद, जिद की, जाओ और देखो क्या हुआ है। वो तो मना करता है पर जिद करती है, जाओ, हट आ जाता है, बाल हट और स्त्री हट। जब हम स्त्री कह रहे हैं, इसका संबंध देह से नहीं है, स्त्रैण और पुरुष स्वभाव है। पुरुष में भी स्त्री है और स्त्री में भी पुरुष। देह की बात नहीं कर रहे, संस्कारों की बात कर रहे। अगला रावण को न पहचान पाना, क्योंकि रावण किस वेश में आया है? रावण के वेश में नहीं आया है, और रावण कभी भी रावण के वेश में नहीं आता है, और माया कभी भी अपने मस्तक पर यह लिखकर नहीं आती है कि मैं माया हूं। माया महाठगनी हम जानी, अपने रूप बदलती है, बहुरूपी है। यहां तक भी ठीक था कि रावण को न पहचाना। हो सकता था कि राम वापस आ जाए, लक्ष्मण वापस आ जाए, यदि उसने सातवीं बात न की होती तो। कौन सी? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन। छठवें तक भी ठीक था, अपहरण नहीं होता, परंतु जवात्मा ईश्वरीय श्रीमत ईश्वरीय मर्यादाएं कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट इनका उल्लंघन कर देती है, इनको ताक पर रख देती है, इनके प्रति अलबेली हो जाती है, इनके प्रति मन में जो भाव था सम्मान का आदर का वो कम हो जाता है और सोचती है ये भी चल जाएगा वो भी चल जाएगा। किसको पता है कौन देख रहा है। तब रावण अपहरण कर ले जाता है और जब जब आत्मा का अपहरण हुआ है इन्हीं सातों अवस्थाओं से आत्मा गई है, कहीं ना कहीं आकर्षण हुआ है, कहीं ना कहीं पाने की इच्छा उत्पन्न हुई है, अविश्वास हुआ है, जिद हुआ है, धोखा परखना नहीं और फिर लक्ष्मण रेखा पार और सीधा सीधा अशोक वाटिका से शोक वाटिका। इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम मर्यादाओं का पालन करो, मर्यादाओं पर चलते रहो तो स्वतः ही सहज ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे। तुम मर्यादाओं पर चलते रहो, चाहे वातावरण कितना भी तमोप्रधान हो तमोगुणी हो, प्रकृति अपना कोई भी विकराल रूप दिखाए, तुम सेफ रहोगे। आज सुबह का है रात को जागकर बाप को याद करो, मेहनत से छूट जाओगे। ये तीन बातें हैं, तमो गुणी आत्माओं से और प्रकृति से सेफ पुरुषोत्तम और मेहनत से मुक्ति। तो इस मुरली में बाबा ने कुछ मर्यादाएं बताई है। हम वो मर्यादाओं की चर्चा नहीं करेंगे, अमृत वेला करना है, मुरली पढ़नी है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है और ब्रह्मा भोजन खाना है और नुमाशाम का योग करना है। इस मुरली में कुछ सूक्ष्म मर्यादाओं की चर्चा है, ऐसी 16 सूक्ष्म मर्यादाएं। पहली स्मृति की मर्यादा, अवेयरनेस की मर्यादा, देह का भान तुपता जाए। आज सुबह कहा बाबा ने, उसके लिए याद रखो कि हम इस तन में थोड़े समय के लिए हैं। पहली मर्यादा है स्मृति की मर्यादा, अवेयरनेस की मर्यादा। ये मर्यादा कहती है कि सभी आत्माएं वैरायटी है, वैरायटी सबका पार्ट है। ये सिमरन नहीं कि ये भी आत्मा और मैं भी आत्मा, परंतु यह स्मृति कि यह है ही आत्मा, है भी आत्मा और मैं भी हूं ही आत्मा, मैं भी हूं ही और ये भी है ही आत्मा। देह को ना देखो, आत्मा को देखो। यह नेचुरल स्मृति हो जाए, इस देह को क्या देखना, इसका ना तो देखना है ना ही इसका कोई ख्याल हो। दो दिन पहले मुरली में था, देह को क्या देखना है, ना तो इसका इसे देखना है और ना ही इसका कोई ख्याल हो। जब चेतना देह के भान से ऊपर उठ जाती है तो उसमें ईश्वरीय शक्ति अभरने लगती है और यही पहली श्रीमत है। इसके प्रयोगी बनो। तो केवल सिमरन नहीं, स्मृति, ये याद और ये नेचुरल याद और ये नेचुरल स्मृति, यही एकमात्र पुरुषार्थ है। बाबा ने डायरिया भर दी और दीवारों को भर दिया था लिखते लिखते। पहला ही पाठ इसी पर काम करना है कि बुद्धि देह की तरफ ना जाए। वो सारे चित्र, वो सारे सिनेमा, वो सारी किताबें, वो सारे दृश्य, वो सारे पोस्टर, वो सारे फोटो जो देह की याद दिलाते हैं, वो सारी काल्पनिक छवियां, मानसिक छवियां, वो सारी यादें, वो सारी वस्तुएं, वो हर बात जो बुद्धि को देह की ओर नीचे खींचती है, उससे परे जाना है। तो सबसे पहली मर्यादा कौन सी है? स्मृति की मर्यादा। स्वयं को याद दिलाओ, याद किसे करना है? सुबह सुबह उठो, उठो और बाप से याद, बाप से बातें करो। आज का है स्मृति में क्या है? दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, अतीत है, भविष्य की चिंताएं है। कौन समाया है मेमोरीज में, अवेयरनेस में? सबसे पहली मर्यादा स्मृति की है। कितनी सूक्ष्म मर्यादा है। एक तरफ स्थूल मर्यादा है, एक तरफ सूक्ष्म मर्यादा है। स्थूल का भी उतना ही महत्व जितना सूक्ष्म का। उन अनगार्डेड मोमेंट्स में अरक्षित क्षणों में हमारे मन में कौन से विचार आते हैं? जब हमें कोई भी नहीं देख रहा, जब एकांत में है, जब अकेले है, कमरे में है, किस तरह के विचार है, किस तरह के भाव है, कौन सी स्मृतियां है? क्या उस समय दुख है, पीड़ा है, आंसू है, कंप्लेंट्स है? चार प्रकार की मालाएं देखी बाबा ने उस दिन। श्रेष्ठ पुरुषार्थी, जो बाप समान बन रहे, पुरुषार्थी समान है, समीप है, प्रेम है, परंतु पुरुषार्थी है। तीसरे पुरुषार्थी है परंतु बहुत बार कभी कभी तूफानों का सामना करने वाले, और चौथे उल्हानों की माला। मैं कौन, चेक करो, मैं कौन? उल्हानों से भरा है मन, कंप्लेंट से भरा है, व्यक्तियों के प्रति, लोगों के प्रति, यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, समय के प्रति, स्थान के प्रति, प्रकृति के प्रति, अतीत के प्रति, भविष्य के प्रति, वर्तमान के प्रति, ड्रामा के प्रति। क्या है? स्वयं को देखो। तो पहली मर्यादा है स्मृति की मर्यादा, दूसरी मर्यादा है स्थिति की मर्यादा। स्थिति कैसी हो तुम्हारी? संस्थिति हो, शक्तिशाली स्थिति हो, हंस आसन हो, जिसमें निर्णय शक्ति हो। यहां पर सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है। चाहे अज्ञात हो, परंतु स्थिति जहां आगे है, चेतना वहां आगे है। स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि यहां की छोटी छोटी बातें, हजार बातें दिन भर में होती है, कुछ भी हमें प्रभावित ना करे। उस दिन हम बात कर रहे थे ब्रह्मा बाबा, भगवान की प्रविष्टता हुई। उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं था कि भगवान की प्रविष्टता होने के बाद क्या क्या होता है। क्या अनुभव था? जो विघ्न आए, जो बाधाएं आई, परंतु ऐसे पार किया जैसे पता है, जैसे कुछ भी नया नहीं है। इसका कोई अनुभव उनके पास नहीं था, परंतु निश्चय था। जरूरी नहीं हर चीज का अनुभव ही होना चाहिए, जरूरी नहीं हर चीज के नरक से व्यक्ति गुजरे और फिर जाने ये ऐसा है। पहले पहले भी जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान कह रहा है यह ऐसा होता है, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, ये देखोगे तो ये होगा। देख कर जानने की जरूरत नहीं है, भगवान वाच है, दोजक का द्वार है यह सिनेमा। फिर क्यों ब्राह्मण आत्माएं सुनने में आती है 11-11 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे और 2-2 बजे तक जागती है? इसी दोजक के पीछे कौन सा एंटरटेनमेंट है उसमें? स्थिति की मर्यादा। यदि स्थिति हमारी कमजोर है, अर्थात हम मर्यादा पर नहीं है, यदि स्थिति हमारी कमजोर है अर्थात हम श्रीमत पर नहीं है, यह भी श्रीमत का उल्लंघन है। स्थिति को हमने बनाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है वो ऐसा है, ये नहीं कह सकते हम अपसेट इसलिए हुए हैं। आगे कहा है बाबा ने परमात्मा प्रेम में, यदि स्थिति कमजोर है और यदि कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है उसको शक्तिशाली बनाने का, तो यह भी अमर्यादा है। तीसरी मर्यादा, यदि स्थिति शक्तिशाली तो स्मृति वृत्ति दृष्टि स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी, यह भी कहा है बाबा ने। तीसरी मर्यादा कर्म की मर्यादा, जब कोई कार्य चालू किया तब स्थिति बहुत अच्छी है, परंतु बीच में व्यर्थ और साधारण हो रहा है और फिर लास्ट में फिर स्थिति अच्छी है, परंतु यह भी अमर्यादा है, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति नहीं रही वहां पर। कर्मों की मर्यादा है कि हर कर्म को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। आज सुबह की साकार मुरली, इस दुनिया में त्रिकालदर्शी त्रुम ब्राह्मणों के अलावा और कोई नहीं है। इस दुनिया में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मणों के अलावा और कोई भी नहीं है। त्रिकाल का जिनके पास ज्ञान है, स्टार्टिंग मिडल और एंड, कोई भी कर्म का तीनों ही शक्तिशाली हो। अमृत वेला भी शक्तिशाली, दिन का, शाम रात शक्तिशाली और बीच का समय शक्तिशाली, तीनों ही यदि शक्तिशाली नहीं है चाहे कर्म का या दिन का, तो सबसे पहले काम करना होगा किस पर? सुबह के समय पर, आदिकाल पर। इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा है अव्यक्त पर्सनल महावाक्य में, अमृत वेले आदिकाल में स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम से अपने अंदर इतना धारण कर लो कि सारे दिन भर फिर किसी भी देहधारी का प्यार लगाव खींचेगा नहीं। यदि कोई देहधारी खींच रहा है, यदि किसी से लगाव हो रहा है, इसका अर्थ संपूर्ण रूप से स्वयं में ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्राप्तियां, शक्तियां भरी नहीं है। पहले अमृत वेला ठीक करो, फिर शाम को ठीक करो या रात को ठीक करो, और फिर दिन भर को भी ठीक करने का प्रयत्न। उसी तरह कर्म में पहले कर्म की शुरुआत को ठीक करो, कर्म के एंड को ठीक करो, और बीच का जो है फिर धीरे धीरे उसको भी ठीक करना चालू करो, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल बीच में है। शुरुआत तो बहुत अच्छी है, अभी अभी मुरली सुनी, अभी अभी अमृत वेला किया है और मैं फरिश्ता हूं, स्वरूप में स्थित है और कर्म क्षेत्र में प्रवेश, और प्रवेश करते ही तुरंत माया का आगमन, और फिर कहां वो अमृत वेला छूट गया और कहां वो मुरली की पॉइंट्स चली गई पता ही नहीं चला, और जब काम पूरा हुआ, सेवा पूरी हुई, तब याद आया कि ये करना चाहिए था, जो नहीं करना था वही कर दिया। शायद जब हम कर्म में आए तब जागे हुए थे, कर्म करने लगे बीच में सो गए। सोना जागना हम चेतना की बात कर रहे हैं, होश और बेहोश। होश अर्थात आत्माभिमान, बेहोश अर्थात देहाभिमान। जब आए थे तो जागे जागे आए थे और जैसे काम आगे बढ़ा सो गए और फिर जागे काम होने के बाद, कर्म करने के बाद, और फिर पता चला ये करना नहीं चाहिए था फिर भी हो गया। मार्क ट्वेन ने लिखा है अपनी एक जगह कि जब भी मैं कहानी लिखने गया, वो लेखक था प्रसिद्ध लंदन का लेखक, उसने लिखा एक कहानी मैं लिखने गया तब मैंने सोच लिया था ये पात्र है, ये पात्र ये काम करेंगे, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ने लगी वो पात्र अपने आप मेरे कंट्रोल से बाहर चले गए, और जब कहानी पूरी हुई तो देखा कि ये पात्रों ने वो काम तो किया ही नहीं जो इनको मैंने सोचा था, उन्होंने तो कुछ और ही कर दिया। ये कैसे हो गया? वो लिखता है शायद जब मैंने ये सोचा था कि ये करेंगे तब भी मैं सोया हुआ ही था, इसके लिए पात्र मेरे हाथ से चले गए, वो जो कैरेक्टर्स थे उसमें किताब में, और वो कुछ कुछ करने लगे, कुछ का कुछ करने लगे। निद्रा की अवस्था, तंद्रा की अवस्था, प्रमाद की अवस्था, स्लंबर स्लीप। व्यक्ति जागा जागा कार्य शुरू करता है, धीरे धीरे व्यर्थ साधारण निद्रा प्रमाद, और फिर कार्य पूरा होता है फिर जागता है। क्या हम करें कि जिससे निरंतर जागे रहे, इसकी प्लानिंग बनानी है। क्या हम करें जो बीच का समय सबसे ज्यादा हलचल बीच में है, उस बीच में सो ना जाए, यही पुरुषार्थ है। इसके लिए छोटे छोटे जागरण का अभ्यास करना है, बीच में छोटी छोटी आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, छोटी छोटी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। ये नहीं कि सबको ही आत्मा देख लूंगा आज, वैसे तो लक्ष्य वही है, पर कम से कम 10 को तो देखूं, चलो 5 को देखता हूं आज। 2 घंटे की सेवा है, 5 लोगों को आत्मा देखना है, इतना भी याद रहे तो हो सौभाग्य। चौथी मर्यादा सेवा की मर्यादा, ये बताई कर्म की, अभी है सेवा की मर्यादा। सेवा की मर्यादा है कि सेवा कहां करने जा रहे हो, बगुलों के बीच, अज्ञानियों के बीच सेवा करने जा रहे हो, ये कर्म बंधन नहीं है, कर्म संबंध नहीं है, ये सेवा का संबंध है और सेवा का बंधन है। ये सेवा का बंधन है, ये सेवा का संबंध है, ये याद रहे। ये लौकिक नहीं, मैं लौकिक में अलौकिक को प्रत्यक्ष करने जा रहा हूं, लौकिक स्थान पर नहीं, लौकिक स्थान पर अलौकिक मूर्त बनकर साक्षात्कार कराने जा रहा हूं। चाहे वातावरण लौकिक हो, चाहे स्थान लौकिक हो, चाहे व्यक्ति जिनके बीच में हम जा रहे वो सभी लौकिक है, लौकिक बातें करने वाले, लौकिकता उनमें समाई हुई है, परंतु मैं अलौकिक हूं, अलौकिक मूर्त। तो कहां जा रहा हूं? सेवा का संबंध, सेवा का बंधन, और सेवा करने से पहले सब कुछ अपने अंदर भरना है, क्योंकि मुरली में आगे एक जगह कहा है एक समय आएगा तब फिर भर नहीं सकेंगे, पहले भरना होगा, परिस्थितियां ऐसी होगी उस समय, पहले ही भरना होगा। जब हम ये पढ़ रहे थे, एक ईसाई संत था कवि सेंट फ्रांसिस जेवियर, जन्म उसका यूरोप में हुआ था, नास्तिक था लगभग, बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं थी, पेरिस की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, उसका एक मित्र था वहां इग्नेशियस, वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था और पादरी था, वो हमेशा इसको कहता रहता था कि तुम भगवान को मानो पर ये नहीं मानता था, परंतु उसकी एक बात उसे हमेशा याद आती थी, व्हाट विल इट गेन्स टू मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड एंड लूजेस हिज ओन सोल। मनुष्य को ये क्या फायदा होगा, सारा संसार पाले परंतु अपनी आत्मा को खो दे। तो फ्रांसिस ये बात को हमेशा सोचते रहता था जो इग्नेशियस ने कही थी, और बार बार कहता था, और एक दिन यही वाक्य उसे जागृत कर देता है और वो भी खुद संन्यास ले लेता है और चर्च में समर्पित हो जाता है। वहां से उसकी जो एक यात्रा है, जो बाइबल में उसने एक जगह पढ़ी थी, ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस 12:1 में, लिव योर कंट्री, लिव योर पीपल, लिव योर फादर्स हाउस होल्ड एंड गो टू द लैंड आई विल शो यू। उसको कहा जाता है कि अपने अपना घर छोड़ दो, अपना देश छोड़ दो, अपने पिता का घर छोड़ दो और वहां जाओ जो मैं तुमको बताऊंगा। उसकी जाने की इच्छा नहीं होती है, परंतु उसे संदेश देना होता है, क्योंकि उसे सारे विश्व को संदेश देना होता है। इसके लिए वहां से यात्रा करते हुए वो भारत पहुंचता है 1542 में, गोवा में, और गोवा में इतनी सबकी सेवाएं करता है, दिन रात सेवा में लगा रहता है, गरीबों की सेवा करता है, कैदियों की सेवा करता है, बंदियों की सेवा करता है, उनके वस्त्र धोता है, सब कुछ करता है, वो सारी चीजें करता है जो कोई नहीं करेगा, और लोगों का दिल जीतता है, परंतु अंदर एक ही रहता है कि मुझे सेवा करनी है। वो अपने घर को छोड़कर आ जाता है, लीव योर कंट्री, अपने देश को छोड़कर आता है, लीव योर फादर्स हाउस होल्ड, लीव योर पीपल एंड गो टू द लैंड आई विल शो यू। भगवान के वचन है बाइबल में कि वहां जाओ और मार्ग मैं बताऊंगा, जाओ पर यहां से। दादी आबू में आई थी, किसी की इच्छा नहीं थी यहां से जाने की, परंतु फिर भी सेवा पर गई। यहां बाबा कह रहे बगुलों के बीच जा रहे हो, परंतु ये ना भूलो कहां जा रहे हो। सेवा का संबंध है, सेवा का बंधन है, कर्म भोग चुक्तु करने नहीं, सेवा करने जा रहे हो। अपने सारे वस्त्र उसने, फ्रांसिस ने, गरीबों को दान कर दिए। जिस शिप में वो बैठ के आए, 1.5 साल लगा वहां पहुंचते पहुंचते भारत, जो केबिन उसको दिया था पोप ने कि तुम इस केबिन में रहना, वो उसने गरीबों को दे दिए, रोगियों को दे दिए। गरीबों की खाट जो थी उसके नीचे ही सोता था, ताकि कोई पेशेंट रात में उठे तो उसको तुरंत दवाई दे दे। रस्सियों के ऊपर सोता था। त्याग ही त्याग, क्यों? एक ही संदेश कि मुझे जिसको वो भगवान समझता था वो संदेश सबको सुनाना है। 43 चर्च, उससे भी ज्यादा उसने एस्टेब्लिश किए, मिशनरीज, जो बाबा कहते ना तुम मिशन, तुम्हारा ये गॉडली मिशन है, वैसे वो भी अपने एक मिशन पर आया था। 10 साल में केवल, 46 में उसकी डेथ हो गई, 46 की आयु में, केवल 10 साल में इतने सारे कार्य उसने कर दिए। तो सेवा, अगली मर्यादा दान की मर्यादा। क्या कहा दान के लिए बाबा ने? तुम कौन हो? वो ब्राह्मण विद्या का दान करते हैं, विद्या देते हैं, तुम्हारा पिता भाग्य विदाता है, तो तुम्हें वर्षे में क्या मिला है? भाग्य मिला है। संसार में संसार के जो लोग दान करते हैं, कपड़े का दान करते, पान का दान करते, मकान का दान करते, जमीन का दान करते, परंतु उससे कभी तृप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें कौन सा दान करना है? भाग्य का दान करना है। जैसे ब्रह्मा ने भाग्य का दान किया, बांटा, वैसे तुम भी बांटो। किसी की तकदीर बना देना, अगर भाग्य बांट दिया तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, परंतु उसके लिए पहले अपने भाग्य को याद रखो, सिमरन करो, मैं कितना भाग्यशाली हूं। एक घंटा भी बिना दान किए ना जाए, कितनी जबरदस्त बात बोल दी, एक घंटा भी बिना दान किए ना जाए। यहां केवल मुख से ज्ञान सुनाने की बात नहीं है, मनसा भी है। क्या ऐसा हम दान कर रहे हैं, या खुद ही भरने में लगे हैं और खुद ही अतृप्त है और खुद ही मांग रहे हैं और खुद ही चाह है? बाबा ने कहा तुमको मिल चुका है, अब तुम दो। ये मर्यादा, ये यदि हम नहीं कर रहे तो अमर्यादा है। अगली, अनुभव की मर्यादा। हीरे तुल्य जीवन है, ब्राह्मण चोटी है, देवताओं से भी ऊंच है। क्या ऐसा अनुभव है? क्या इतनी खुशी है? ये अनुभव की मर्यादा है। पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर दो। ब्राह्मण चोटी, संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, ऐसा अनुभव है। हीरे तुल्य जीवन है, ऐसा अनुभव है। देवताओं से भी हम श्रेष्ठ है, ऐसा अनुभव है। यदि नहीं है तो यह भी क्या है? अमर्यादा। अमर्यादा शब्द सुनते ही अंदर चोट लगनी चाहिए, यह नहीं हो रहा है। फिर जहां से मुरली की हमने शुरुआत की थी कि जीवन में निरसता ना हो, ऐसी यहां पर सात बातें हैं। संसार में जो भी ऑक्यूपेशन से सब तुम हो, सबसे पहली सिंगिंग, गाने की मर्यादा। तुम हो कौन? स्पिरिचुअल सिंगर हो तुम। पाना था सो पा लिया, ये तुम्हारा गीत है। हमारे गीत दुख के, दर्द के, मांगने के, भक्ति के, पीड़ा के नहीं हो सकते। स्पिरिचुअल सिंगिंग की मर्यादा, हमें सॉन्ग जो दिया गया है वो एक खुशी के सॉन्ग है, पोस्ट रियलाइजेशन सॉन्ग है हमारे, प्री रियलाइजेशन सॉन्ग नहीं है, जिसमें भक्त याचना कर रहा है, उपासना कर रहा है, मांग रहा है दे दो, वो हमारे गीत नहीं है। हमारे पा लिया के गीत है। तो जब जब हमारे मुख से कोई गीत निकले, कैसा हो वो? खुशी का, पाने का, दुख का नहीं, दर्द का नहीं, मांगने का नहीं। तो सिंगिंग की मर्यादा। दूसरा है तुम कौन हो? स्पिरिचुअल डांसर हो, नर्तक, ज्ञान का डांस करो। मैं कौन सा डांस कर रहा हूं? दुख का, पीड़ा का, वेदना का, बदले का, कौन सा डांस चालू है? अंतर मन में आत्मा, कौन सा डांस हो रहा है? कंप्लेंट का, ज्ञान की पुलपुल टिकलू टिकलू करते रहे। तीसरा, तुम स्पिरिचुअल पेंटर हो, चित्रकार, बुद्धि योग से अपने फरिश्ते स्वरूप का चित्र निकालते हो। मैं जो चित्र निकाल रहा हूं, क्या वो मर्यादा पूर्वक है? यदि फरिश्ता मैं नहीं निकाल रहा हूं, देवता का चित्र नहीं निकाल रहा हूं, कुछ और निकाल रहा हूं, तो ये भी अमर्यादा है। निकालना अर्थात विजुअलाइजेशन करना, सोचना उसके बारे में, ये मैं हूं। बाबा कहते तुम ये है, ये हो, हम सोच रहे ये मैं हूं, तो ये भी तो अमर्यादा हुई। मर्यादा ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग। अगला है तुम हो स्पिरिचुअल आर्टिस्ट, मर्यादा आर्ट की। कौन सी कला मैं दिखा रहा हूं? उड़ती कला है या बहानेबाजी की कला है? कौन सी कला है? ठहरती कला है, रुकती कला है, खाली दौड़ती कला है, खाली चढ़ती कला है, या उतरती कला है, या गिरती कला है, या फिर उड़ती कला है? इन कलाओं में से मेरी कौन सी है? मैं कौन सा आर्टिस्ट हूं? अगला, बिजनेसमैन। तुम स्पिरिचुअल बिजनेसमैन हो। कौन सा बिजनेस मैं कर रहा हूं? तुम स्पिरिचुअल मिल मास्टर हो। कौन सी मिल मैं चला रहा हूं? टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल, संसार की मिल है ये। बाबा ने कहा तुम मिल के मालिक हो, ज्ञान की मिल, योग की मिल, तुम माइन के भी मालिक हो, माइन मास्टर हो। क्या सारे खजाने मुझ में भरपूर है जिसका मैं मालिक हूं? यदि नहीं तो ये भी अमर्यादा है। तो ऐसी ये पहले 6 और ये 7 13 मर्यादाएं, 3 मर्यादाएं और है जो हम ट्रैफिक कंट्रोल के बाद सुनेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल है जो 13 बातें अभी बताई, अपने मन में एक बार उन्हें रिवाइज करना है। पहला स्मृति, दूसरा स्थिति, तीसरा कर्म, चौथा सेवा, पांचवा अनुभव, दान और अनुभव, और फिर स्पिरिचुअल सिंगर हूं, स्पिरिचुअल डांसर हूं, स्पिरिचुअल आर्टिस्ट हूं, स्पिरिचुअल पेंटर हूं, स्पिरिचुअल बिजनेसमैन हूं, स्पिरिचुअल मिल मास्टर हूं, स्पिरिचुअल माइंड मास्टर हूं। अगली मर्यादा कुमारों के लिए। कुमारों को बाबा ने कहा है गड़बड़ नहीं करना, अविनाशी रहना। ये कौन सी मर्यादा है कुमारों के लिए? कौन सी गड़बड़, इस पर चिंता चिंतन करने का विषय है। किस गड़बड़ की बातें बाबा कर रहे हैं? कुमारों के लिए मर्यादा क्या है? कोई भी गड़बड़ नहीं करना, अपनी धारणाओं पर मजबूत रहना, चाहे दुनिया एक तरफ और हम अकेले एक तरफ, फिर भी अडिग और सर्वश्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता की। पंद्रहवीं शक्तियों के लिए मर्यादा है। शक्तियां अर्थात सदैव शिव से कंबाइंड भुजा है। यदि शक्ति शिव से अलग है, यदि शक्ति शिव को छोड़कर कहीं और बुद्धियोग लगाए बैठे हैं, तो ये श्रीमत का उल्लंघन है। इसके लिए वारे मैं, इसको नहीं भूलना। शिव और शक्ति कंबाइन का गायन है, अपने आप को अलग नहीं कर देना उससे। 16वीं मर्यादा अंतिम, इसमें बहुत सी बातें हैं। परमात्मा प्रेम की मर्यादा, बाबा ने कहा है अमृत वेला स्वयं को इस परमात्मा प्रेम से भर दो। ये परमात्मा प्रेम तुम्हें सहज योगी बनाएगा, ये परमात्मा प्रेम तुम्हें उड़ती कला में ले जाएगा, फिर नीचे की कोई आकर्षण खींचेगी नहीं। ये परमात्मा प्रेम सुखदायी झूला है, ये परमात्मा प्रेम तुम्हें सब कुछ देगा, सुख शांति जो चाहिए वो दे देता है। ये परमात्मा प्रेम मेहनत से छुड़ाएगा, ये परमात्मा प्रेम तुम्हें झलक फलक और वो शक्तियों की किरणें जिसमें समस्या तुम्हारी तरफ देखना तो क्या, आना तो क्या, आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। ये परमात्मा प्रेम में अखूट है, सबको देते जाओ। प्रेम जब किसी से होता है तो उस व्यक्ति को सामने रखा जाता है। बाप यह चाहते हैं कि हर एक संपन्न संपूर्ण संपन्न बन जाए। प्रेम में न्योछावर किया जाता है, प्रेम में समर्पण किया जाता है। ये प्रेम ही एक झूला है। परमात्मा प्रेम से यदि हमने स्वयं को पूरा नहीं भरा है तो ये भी अमर्यादा है। ईश्वरीय प्रेम से स्वयं को भरना, अमृत वेले ये कार्य करना है। इतना भर देना कि दिन भर फिर कोई देहधारी ना खींचे, किसी का सहारा, किसी की मदद, किसी का कंधा नहीं चाहिए। एक वही सब कुछ है, तुम ही हमारे हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। जैसे बाप कहते हैं तुम मेरे हो, हम भी कहते हैं कि तुम ही सब कुछ हो। ईश्वरीय प्रेम की मर्यादा, क्या हमारा प्रेम जब हम बाबा के बने थे और आज उतना ही है या बढ़ रहा है हर दिन? यदि उतना ही है अर्थात हम उसमें कार्य नहीं कर रहे, हर दिन बढ़े, हर दिन प्रेम में आगे जाना है। वो लोग फॉल इन लव है या राइज इन लव है, तो स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से भरपूर करना है। और जिससे प्यार होता है उसकी कोई कमी नहीं देख सकता है, तो बाबा हमारी कोई कमी नहीं देख सकता है। इसके लिए यही उसके प्यार का रिटर्न होगा। अव्यक्त मास चालू है, 21 दिन का यज्ञ की तरफ से जो होमवर्क मिला था सबने किया ही होगा, और जिस जिसने किया होगा उसको स्वतः ही परमात्मा दुआएं मिल जाएगी। कल जो पूरा हुआ 21 दिन, 21 दिन के बाद 23 तारीख को 69 जनवरी में बहुत सुंदर एक मुरली चली थी, अस्थिया स्मृति दिलाएगी स्थिति की। ब्रह्मा की अस्थिया तुम्हें स्मृति दिलाएगी उसकी स्थिति की। स्थिति में रग रग में स्थिति समाई है, अव्यक्त महावाक्य है। तो इस अव्यक्त मास का विशेष महत्व है। यज्ञ की तरफ से जो 21 दिन का होमवर्क जो कल पूरा हुआ, सच्चे दिल से और सच्चे मन से जिस जिसने किया होगा, भविष्य के लिए भी उसका जमा हुआ होगा ही। और जिन्होंने नहीं किया, अभी भी कुछ समय बाकी है, अव्यक्त मास चालू है, अव्यक्त गंगा अव्यक्त धारा अभी भी बह रही है। तो इस मास में आज कितना 7 दिन और बाकी है, 21 दिन अगर नहीं किया तो इस 7 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। नहीं किया तो दूसरा कोई चारा भी नहीं है, अभी करना ही पड़ेगा क्योंकि वो दिन तो गए। और समय का महत्व होता है, जिस समय बाबा ने जो होमवर्क दिया यदि कोई उसी समय पूरा करता है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बाद में करो तो मार्क्स मिलेंगे पर शायद थोड़े कम। पर जो काम जब दिया गया और यज्ञ की तरफ से आया था तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स। और जिन्होंने नहीं किए अभी भी 7 दिन बाकी है, वो सारा होमवर्क फिर से निकालो, 1 से लेकर तो 21 दिन तक जो जो पुरुषार्थ था उसको, दिन में सुबह एक पुरुषार्थ, दोपहर को एक पुरुषार्थ और शाम को एक पुरुषार्थ, ऐसे दिन को 3 भागों में विभाजित करो। अगले 7 दिन, 9 दिन, चलो 9 दिन तो भी काम होगा, परंतु करना जरूर है ये मास होने के पहले, जो जो उसमें दिया था कम से कम वो वाक्य हमारे मन में गूंजते रहे। अच्छा, ऐसे व्यर्थ को समाप्त करने वाले हंस आसन पर बैठने वाले समर्थ स्थिति में रहने वाले बच्चों को ऐसे सदा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को ऐसे सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माओं को ऐसे हर कर्म में त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों कालों में समर्थ रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।